मार्गदर्शन।
श्रोतो, साप्ताहिक कार्यक्रम मार्गदर्शन के कन्ने कड़ी के साथ आपकी सेवा में उपस्थित हैं मरियम मेहर दादी और अहमद अब्बास का सलाम स्वीकार कीजिए। आज के कार्यक्रम में हम आत्मनिर्माण के बारे में चर्चा करेंगे।
वैसे तो आत्मनिर्माण और चरित्र निर्माण के लिए सदैव प्रयासरत रहना चाहिए, किंतु इसका सबसे अच्छा काल किशोरावस्था है। ये वो काल है जब मनुष्य मानवीय विशेषताओं को अपने भीतर सजा सकता है। इस बारे में हज़रत अली अलैहिस्सलाम अपने सुपुत्र इमाम हसन अलैहिस्सलाम को की जाने वाली वसीयत में कहते हैं कि किशोर का दिल उस धरती जैसा है जिस पर अभी खेती नहीं की गई है, अतः इसमें जो भी बो दिया जाएगा वो निकलेगा। इससे पहले कि तुम्हारी आयु बढ़े और दिल कठोर हो, स्वयं को शिक्षा और प्रशिक्षण में व्यस्त करो। मेरे बेटे, देखो, सबसे अच्छी विशेषता तक्वा अर्थात ईश्वरीय भय है।
अगर गौर किया जाए तो पता चलेगा कि जवानी एक ईश्वरीय विभूति है। युवा अवस्था के काल में उनके भीतर बहुत अधिक उत्साह भरा होता है। इसका आरंभ किशोरावस्था से होता है। इस आयु में आंतरिक इच्छाओं पर नियंत्रण बहुत कठिन होता है। ऐसे में सही मार्ग से भटकने की संभावना बहुत अधिक होती है। किशोरावस्था में आत्मनिर्माण के प्रयास और ईश्वरीय भय से किशोर बुराइयों से सुरक्षित हो जाता है। इस आयु में तकवा एक ढाल की भांति है जो युवा को पापों से सुरक्षित रखता है। वे किशोर या युवा जो आरंभ से भी नैतिकता की ओर ध्यान देते हुए आत्मनिर्माण में लग जाते हैं, वे नाना प्रकार की बुराइयों से सुरक्षित रहते हैं।
एक बार पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक युवा को देखकर ये दुआ की थी, हे ईश्वर, इस युवा को जवानी से लाभान्वित होने दे। पैगम्बर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इस दुआ से पता चलता है कि हर युवा अपनी जवानी से लाभान्वित नहीं हो पाता। जवानी से लाभ उठाने का अर्थ क्या है? जवानी से लाभ उठाने का अर्थ, अगर आप ये समझते हैं कि आंतरिक इच्छाओं की पूर्ति की जाए और अनैतिक मार्ग अपनाया जाए, तो ये बहुत बड़ी भूल है। जवानी से सही लाभ उठाने का अर्थ ये है कि युवा ईश्वर के आदेशों का पालन करे। अगर कोई युवा अपनी जवानी में ईश्वरीय आदेशों का पालन करता है तो उसको इसका बहुत अधिक पुण्य मिलेगा। इसके लिए आदर्श के रूप में जिसे पेश किया गया है वे हज़रत यूसुफ अलैहिस्सलाम हैं।
यहाँ पर शायद आपके मन में ही ये सवाल आए कि ईश्वर की उपासना का अर्थ ये है कि मनुष्य केवल नमाज रोज़ा करे और समाज से दूर हो जाए। इस बारे में इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी कहते हैं कि ईश्वर की उपासना केवल नमाज तक सीमित नहीं है। जीवन के विस्तृत क्षेत्र में ईश्वर की उपासना के कई अन्य पर्याय मिलते हैं, जिनमें से एक पापों से दूरी है, अर्थात स्वयं को पापों से बचाना। यहाँ पर इस बात का उल्लेख ज़रूरी है कि नमाज पढ़ने के बहुत से फायदे हैं। चरित्र निर्माण में इसकी बहुत महत्वपूर्ण भूमिका है, लेकिन ये पर्याप्त नहीं है। वे कहते हैं कि पढ़ना, मेहनत, मजदूरी करना, हलाल रोज़ी कमाना, दूसरों की सहायता करना और इसी प्रकार के काम ईश्वर की उपासना की सूची में आते हैं। वे कहते हैं कि आत्मनिर्माण उस समय मूल्यवान है जब व्यर्थ समय बर्बाद न किया जाए और पापों से बचते हुए एक सक्रिय जीवन गुजारा जाए।
पवित्र कुरान ने युवाओं के लिए जो आदर्श पेश किया है वो हज़रत यूसुफ का है। वे बहुत ही सुंदर थे, उनकी सुंदरता की हर ओर चर्चा थी। एक बार जब एक सुंदर महिला ने उन्हें पाप करने के लिए प्रेरित किया तो उन्होंने उसकी बात नहीं मानी और वे उस स्थान से चले गए। ऐसे में उन्होंने ईश्वर की शरण मांगी। हज़रत यूसुफ की घटना के बारे में आयतुल्लाह उज़्मा सैयद अली खामेनी कहते हैं कि वे वास्तव में ईश्वरीय भय रखने वालों के आदर्श थे। वे कहते हैं कि आप सोचिए कि एक युवक जो बहुत सुंदर है, उसे एक सुंदर महिला पाप के लिए प्रेरित करती है, किंतु जवानी में भी वो ऐसे प्रस्ताव को ठुकरा देता है। वास्तव में ये बहुत ही प्रशंसनीय काम है।
इस घटना में दो तरह से भूमिका निभाई जा सकती है। एक तो ये है कि जवानी के जोश में अनैतिक काम कर गुजरे और पापों का हार अपने गले में डाल ले। दूसरी भूमिका यह है कि ईश्वर की प्रशंसा के लिए मनुष्य स्वयं पर नियंत्रण करे और पापों से दूर रहे। इस प्रकार से मनुष्य आध्यात्मिक दृष्टि से उच्च स्थान प्राप्त करता है। यौन इच्छाओं का विरोध करने का पहला फल ये होता है कि पहली इच्छा का विरोध करने से दूसरी यौन इच्छा के विरोध की शक्ति पैदा होती है। हजरत यूसुफ स्वयं भी बहुत सुंदर थे, उनके पास धन दौलत भी थी और उनकी ख्याति भी बहुत दूर दूर तक थी, किंतु उन्होंने यौन इच्छा का विरोध करके ईश्वर के निकट बहुत उच्च स्थान प्राप्त किया अर्थात पैगंबरी। इससे पता चलता है कि आंतरिक इच्छाओं के दमन करने के कारण ईश्वर अपने बंदे को पुरस्कार से सम्मानित करता है।
इस्लामी क्रांति के वरिष्ठ नेता कहते हैं कि आत्मनिर्माण के लिए जिस विशेषता की सबसे अधिक आवश्यकता है वह है निष्ठा। निष्ठा ऐसी विशेषता है जिसके बिना आत्मनिर्माण लगभग असंभव है। वे कहते हैं कि निष्ठा का अर्थ यह है कि मनुष्य जो काम भी करे वो केवल ईश्वर से निकटता के उद्देश्य से करे। निष्ठा वास्तव में यह है कि मनुष्य अपने मन में एक प्रकार का प्रण कर लेता है कि वो जो कुछ भी करेगा वो केवल ईश्वर के लिए ही करेगा, दूसरों के लिए नहीं। उसकी इच्छा होती है कि वो ईश्वर के ध्यान को आकर्षित करने के लिए काम करे, न के दूसरों के ध्यान को।
निष्ठा के विषय की चर्चा करते समय ये बात सामने आती है कि कुछ लोग अपने अच्छे कामों को दूसरों पर जताते हैं। वरिष्ठ नेता कहते हैं कि यदि अच्छा काम छिप कर किया जाए और उसे छिपाया जाए तो उसके अपने अलग प्रभाव होते हैं। नेक काम को छिपाने से उसका महत्व बढ़ता है। यहाँ पर इस बात का उल्लेख अनिवार्य है कि कभी कभी अच्छे काम दिखाकर करने चाहिए ताकि दूसरे भी उसे करने के लिए आगे आएं। हालांकि इतना सब होने के बावजूद अच्छे कामों को छिपाने का महत्व अलग है और उसका प्रभाव भी इसी प्रकार है।
इस बारे में पैगंबर इस्लाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि हर चीज़ की एक वास्तविकता होती है, अच्छे कामों को छिपाना ही उसकी वास्तविकता है। वे कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति निष्ठा के उस वास्तविक अर्थ को उस समय तक प्राप्त नहीं कर सकता जब तक कि वो अच्छे काम को न छिपाए। आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामनी कहते हैं कि निष्ठापूर्ण काम की सबसे बड़ी अच्छाई ये है कि निश्चित रूप में इसका परिणाम मिलता है। वे कहते हैं कि निष्ठापूर्ण काम करने की आदत किशोरावस्था से ही डालनी चाहिए, क्योंकि उस काल में जो आदत पड़ जाती है वो आयु के अंतिम समय तक बाकी रह सकती है।
ईरान की इस्लामी क्रांति के संस्थापक स्वर्गीय इमाम खुमैनी युवाओं को संबोधित करते हुए कहते हैं कि जवानों, हाथ पर हाथ रख कर बुढ़ापे का इंतज़ार न करो। हम बूढ़े हो चुके हैं और हमको बुढ़ापे की समस्याओं के बारे में अच्छी तरह से पता है। तुम लोग जब तक जवान हो उस समय तक बहुत कुछ कर सकते हो। तुम्हारे भीतर जब तक जवानी है, शक्ति है, उल्लास है, तुम आंतरिक इच्छाओं का दमन कर सकते हो। वे कहते हैं कि अगर तुमने किशोरावस्था से ही आत्मनिर्माण के बारे में काम करना आरंभ नहीं किया तो फिर बुढ़ापे में कुछ कर नहीं पाओगे। उस समय सिवाय पछतावे के कुछ और नहीं होगा। युवा का मन कोमल होता है, उसके भीतर पाप करने की इच्छा अपेक्षाकृत कम होती है। जैसे जैसे आयु बढ़ती जाती है हृदय के भीतर पाप की जड़ें मजबूत हो जाती हैं। बाद में एक समय ऐसा भी आ जाता है कि जब उन्हें उखाड़ फेंकना असंभव हो जाता है।
आत्मनिर्माण ऐसा काम है जिसका आरंभ किशोरावस्था से हो जाना चाहिए, बाद में इसे निर्बाध रूप से बढ़ते रहना चाहिए। आयतुल्लाह लुज़्मा सैयद अली खामनी कहते हैं कि मोमिन को सदैव आत्मनिर्माण करना चाहिए। जो इस बात का ध्यान रखता है वो पापों से दूर रहता है, वो ईश्वर के मार्ग पर पूरी दृढ़ता के साथ आगे बढ़ता है। इस्लामी आदेशों के पालन से ये रास्ता आसान होता जाता है। बहुत अफसोस की बात है कि कोई इस दुनिया में आए पापों से बचने की कोशिश ना करे, आत्मनिर्माण ना करे और जैसा आया है वैसा ही वापस चला जाए।